ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराकर आगामी चुनाव में विवेक का मत प्रयोग करने का नई पीढ़ी को प्रधानमंत्री सुशीला कर्के ने किया आह्वान। लोकतंत्र में संवाद से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई बनेपा स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र से हुई शुरू। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर लगी पाबंदियां हटाने का किया है फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कर्के ने नई पीढ़ी को मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराकर आगामी चुनाव में विवेक का मत प्रयोग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कर्के ने एक वीडियो संदेश के जरिए इस बात का स्मरण कराया कि नागरिकों के पास अपने विवेक का सही प्रयोग करने के लिए आधिकारिक रूप में मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए। इसी बीच नेपाल जनजी फ्रंट ने राष्ट्रीय परिचय पत्र के विवरण के आधार पर निर्वाचन केन्द्र पर ही बायोमेट्रिक जांच करके मतदान करने का प्रबंध करने की मांग की है। फ्रंट के संयोजक रक्षा बम ने आज एक बयान जारी कर सरकार और निर्वाचन आयोग से ऐसी मांग की। बता दें कि आगामी फागुन 21 गति के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग देशभर कार्तिक 30 गति तक मतदाता नामावली संकलित कर रहा है। गौरतलब है कि अब तक महज 1,36,000 नए मतदाता ही नामावली में दर्ज हुए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सभाओं के सभामुखों और उपसभामुखों के साथ आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुई भेंट में राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक आचरण को जीवन में उतारना जरूरी है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि युवा पीढ़ी की सुशासन और विकास के प्रति प्रकट हुई चाह को ध्यान में रखते हुए संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को और अधिक उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी फागुन 21 के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना सबका साझा दायित्व है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र से छापना शुरू कर दिया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत बनेपा में स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ने आज से लाइसेंस की छपाई शुरू की है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने आज छपाई का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री खरेल ने कहा कि इस मशीन से राष्ट्रीय परिचय पत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई समेत बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वाधार और स्रोत साधन होने के बावजूद छपाई नहीं हो रही हालिया स्थिति में नीतिगत सुधार करके छपाई का काम शुरू किया गया है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की आज की बैठक में पार्टी के 15वें महाधिवेशन और पार्टी की आगामी कार्यदिशा के बारे में विचार विमर्श हुआ। बता दें कि बीते भाद्र 23 और 24 गते के आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति संबंध में विमर्श के लिए बीते आश्विन 28 गते से ही केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाती आ रही है, लेकिन महाधिवेशन की तिथि को लेकर विवाद के कारण बैठक बार बार स्थगित होती और लंबा खिंचती आ रही है। विवाद के ही बीच कार्तिक 18 की बैठक में पार्टी के महामंत्री गगन कुमार थापा और सह महामंत्री महेंद्र यादव ने पार्टी के महाधिवेशन के लिए दो अलग अलग तिथियां और कार्यतालिकाएं प्रस्तुत कीं। इसके बाद नेताओं के बीच का विवाद और जटिल बन गया है। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में नेताओं के धारणा रखने का क्रम जारी है और अगली बैठक परसों कार्तिक 23 को रविवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। संघीय सरकार सहित प्रदेश सभाओं के सभामुखों की बैठक ने प्रदेश कानून में की गई व्यवस्था को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने के मुद्दे का पुनरावलोकन करने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज खिमरे के आमंत्रण पर सातों प्रदेश सभाओं के सभामुखों के साथ आज सिंह दरबार में हुई चर्चा में संघीय सरकार के उस निर्णय से कानून का शासन कायम न होने की स्थिति बनने का निष्कर्ष निकाला गया है। बैठक ने जनजी प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा में हुई क्षति का आकलन कर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सभा संचालन करने का वातावरण बनाने और पुनर्निर्माण आगे बढ़ाने का सरकार से अनुरोध भी किया है। बैठक ने जनप्रतिनिधियों को जनसेवा में सहजीकरण करने के लिए स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोत साधनों सहित कार्यकक्ष और आवश्यक सुविधा व्यवस्था करने का अध्ययन करने का निष्कर्ष निकाला है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। वैदेशिक रोजगार विभाग की ईपीएस कोरिया शाखा ने दक्षिण कोरिया की ईपीएस प्रणाली के माध्यम से श्रमिक चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय बताते हुए गलत आश्वासनों पर विश्वास न करने का श्रमिकों से आग्रह किया है। किसी भी व्यक्ति, फर्म या सोशल मीडिया के माध्यम से दिए गए गलत आश्वासनों पर विश्वास न करने और इस तरह के झूठे प्रचार, गलत सूचना, अफवाहों के प्रति सचेत रहने तथा ठगी से बचने के लिए शाखा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अनुरोध किया है। साथ ही शाखा के नाम का उपयोग करके विभिन्न नकली फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पेज बनाकर सेवाग्राहियों में फैलाया जा रहे भ्रम का जिक्र करते हुए ईपीएस कोरिया शाखा ने सभी सरकार वालों से इस तरह की आधारहीन और भ्रमपूर्ण सूचनाओं के पीछे न भागने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि नेपाल सरकार और दक्षिण कोरिया सरकार के बीच सन 2007 में रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस समझौता होने के बाद अब तक लगभग 1,20,000 नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया जाकर रोजगार का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ दवाओं, सर्जिकल सामग्री से लेकर उपकरणों तक की खरीद में जिला अस्पतालों को अनिवार्य रूप से टेंडर खुला करने की व्यवस्था की है। इससे पहले जिला अस्पतालों द्वारा दवाओं और दवा से संबंधित स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद के दौरान प्रक्रिया को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर महीनों तक दलालों के दबाव में दवाएं खरीदने की जानकारी मिलने के बाद मंत्रालय ने प्रदेश अंतर्गत आने वाले सभी जिला अस्पतालों को ऐसा निर्देश किया है। मुस्तांग डोलपा सड़क पिछले 10 दिनों से अवरुद्ध बनी हुई है। भारी हिमपात के कारण ये सड़क अवरुद्ध है। सड़क विभाग कार्यालय मुस्तांग के अनुसार मुस्तांग डोलपा सड़क परियोजना के तहत मुस्तांग के पाकलिंग से सांगता गांव होते हुए डोलपा जाने वाली सड़क का विस्तार छुकसांव तक किया जा चुका है। ऊपरी डोलपा के नागरिकों के लिए मुस्तांग के जोमसोम आकर माल सामान ढुलाई करने तथा पोखरा काठमांडू आने जाने के लिए डोलपा जिला मुख्यालय से दोनों की तुलना में छोटे मार्ग के रूप में इस सड़क का उपयोग करने के लिए सड़क विभाग कार्यालय बागलंग द्वारा मुस्तांग डोलपा सड़क का उन्नयन और एक नया ट्रैक खोला गया है। 6 महीने से 59 महीने तक के बच्चों को आज भी विटामिन ए और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़े की दवा खिलाई गई है। स्वास्थ्य सेवा विभाग की पोषण शाखा ने बताया है कि आज भी बच्चों को राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम के तहत विटामिन ए कैप्सूल और पेट के कीड़े की दवा कल छूटे हुए बच्चों को खिलाई गई। शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा ने जानकारी दी कि दूसरे चरण का विटामिन ए कार्यक्रम के तहत आगामी 6 और 7 वैशाख को दवा खिलाई जाएगी। बच्चों में कुपोषण का जोखिम न हो इसके लिए सरकार ने विक्रम संवत 2050 से विटामिन ए कैप्सूल और विक्रम संवत 2056 से पेट के कीड़े की दवा नियमित रूप से खिलाना शुरू किया था। भारत के बिहार राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश से लगे विभिन्न जिलों की सीमाएं कल से बंद की जाएंगी। मध्य प्रदेश के धनुषा, महोत्तरी, सरलाही तथा रोहतट जिलों के प्रशासन कार्यालयों ने आज सूचना जारी करते हुए बताया है कि कल शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक सीमाएं बंद रहेंगी। जारी सूचना में उल्लेख किया गया है कि कल शनिवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक नेपाल भारत सीमा पर मानवीय आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बता दें कि नेपाल भारत सीमा बंद होने के कारण महोत्तरी के बिजलपुरा, कुर्था, जनकपुर धाम, जयनगर ब्रॉडगेज रेल सेवा भी बंद हो जाएगी। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड ने बताया है कि सीमा बंद होने के कारण भारत के जयनगर तक जाने वाली रेल सेवा शनिवार शाम से बंद कर दी जाएगी। कंचनपुर में मुक्त हलवा की पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी स्थानीय तह को हस्तांतरित किए जाने के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुनर्स्थापना का कार्य अभी तक ओझल है। राष्ट्रीय मुक्त हलिया समाज कंचनपुर के अध्यक्ष सीवी लोहार ने बताया कि जब हलवा पुनर्स्थापना समस्या समाधान समिति सक्रिय थी तब पुनर्स्थापना के कार्य आगे बढ़े थे, लेकिन विक्रम संवत 2076 साल से स्थानीय तह को जिम्मेदारी हस्तांतरित करने के बाद कार्य ठप पड़ गया है। मुक्तहलिया समाज ने बताया है कि सुदूर पश्चिम के दारचूला और बझांग जिलों में ही पुनर्स्थापना का कार्य पूरा हुआ है, जबकि अन्य जिलों में ये प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर लगी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। ये पाबंदियां सीरियाई राष्ट्रपति के अगले हफ्ते होने वाले व्हाइट हाउस दौरे से ठीक पहले हटाई गई हैं। अहमद अल शरा को दिसंबर 2024 में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोही हमले का नेतृत्व करने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही सीरिया में 13 साल से जारी गृह युद्ध का अंत हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि यूएन ने एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है जो ये दर्शाता है कि असद के हटाए जाने के बाद सीरिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अल शरा पर यूएन की ओर से पाबंदियां इसलिए लगाई गई थीं क्योंकि वो इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम एचटीएस के नेता रह चुके हैं। ये समूह अलकायदा से जुड़ा हुआ संगठन था। अमेरिका ने जुलाई में एचटीएस को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया था। यूएन ने सीरिया के गृहमंत्री अनस खत्ताब पर लगी पाबंदियां भी समाप्त कर दी हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराकर आगामी चुनाव में विवेक का मत प्रयोग करने का नई पीढ़ी को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया आह्वान। लोकतंत्र में संवाद से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई बने पार्षद सुरक्षण मुद्रण केंद्र से हुई शुरू। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर लगी पाबंदियां हटाने का किया है फैसला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।